سب نے دیکھا گوپیوں نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ جو نروکا نت ترپت پی رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ جن کے کھیل سے جن کی مایا سے سارا سنت سمدائے رشمن سمدائے دیو سمدائے بمورت ہے بمگدھ ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ سوئم بمگدھ ہوا اور ان کے ساتھ کھیلتا ہے, بمگدھ ہوا کھیلتا ہے, لاج شرم نہیں آتی کہ بننا دیکھ کے کیا کہیں گے, اتنا بڑا کہ چھوٹے بچے کے ساتھ کھیلے تو بڑے آدمی میں ذرا شرم آتی ہے, ذرا سا اکیلے میں تو کھیل لیتا ہے, سب کے ساتھ میں آ گیا تو بولے ذرا بچے بٹھا دیتا ہوں, بولے تم جاؤ, پر یہاں تو بچے ہیں, میرے بچے بنے کھیلتے ہیں, لاج شرم کا نام نہیں, پرتشٹھا عزت کا نام نہیں, یہ بھی سوچتے کہ یہ کیا کہیں گے یہ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ کہ یہ اہیر اور اہیر بالک اور اہرینی گنوارینی استریاں ان کے ساتھ اتنا میل جول, یہ کیسی چیز ہے اتنے بڑے جو سرونیتا سرویشور سرولوک مہیشور ہیں, پر ان کے تو من میں چاو لگا, تو برہما جی کہتے ہیں کہ مہاراج یہی تو ان گایوں کی اور ان بجرمنیوں کے جیون دھارن کی سفلتا ہے, یہ کٹاستا کی پراکاشٹھا ہے بھگوان, اس سے پر کٹاستا ہوگی کیا, ان گوپرمنیوں کو ان گایوں کو کیول دھن ہے, او مہاراج کیول انہیں کو نہیں, او بھاگیم ہو بھاگیم نند گوپ برجو کسان جم وتم پرمانندم پورنم برہم سناتنم, ان کیول گایوں اور گوپیوں کو ہی نہیں نند برج کے ادیواسی ماتر کو یہ پرم سوبھاگ ہمیں وچنی سوبھاگ پراپت ہے بھگوان, یہ دھنیہ ہو گئے نند بابا کے گوپ راج نند کے برج میں جن کو آج ستھان مل گیا, جن کو یہاں جنم لینے کا آنے کا سوبھاگ پراپت ہو گیا, کہیں بھی ان کے بھاگ کی تلنا نہیں ہو سکتی بھگوان, او بھاگیم ہو بھاگیم, کون بڑائی کرے ان کے بھاگے کی, کیونکہ اس سے پہلے اس پرکار کا پریم دان پریم وترن رس وترن کہیں کسی کو کسی پرکار سے ہوا ہی نہیں, ہوا کسی آور میں ہوا, کسی دوسرے پاتر میں رکھ کر کے ہوا, پرنتو کھلا مکت کسی پرکار کی دوسری آورجنا سے شونی میرا آورن پرمانند سوروپ سناتن پریپورن برہم کا یہ رس وترن اس برج کے پشو پکشی برج کے برکش لتا برج کی یہ برج کے گلم اور برج کی بیلیں بندریاں ان سب کو رسدان کیا, سب سے کھیلے, ایسے نہیں کہ محلوں میں رہ کر کے آرام کرسیوں پر بیٹھے رہے ہوں سنگھاسنوں پر سو نہیں, برکشوں کے جال جا کے گلے لگ گئے, بیلوں کو گلے لگایا, پتوں سے پریم کیا, گھاس کے تنکوں سے پریم کیا, سروگروں میں جا کر کے کود پڑے, سروگروں کے میڈکوں کے ساتھ کھیلے, جل دیہوں کے ساتھ کھیلے, اٹھتے ہوئے پکشیوں کی چھایا کے ساتھ کھیلے, پشوؤں کے ساتھ کھیلے, سانپوں کے ساتھ کھیلے, بندروں کے ساتھ کھیلے, نہیں معلوم کس کس کے ساتھ کھیلے, تو یہ اپرتم سوبھاگیہ, اس سے پورو برہما جی کہتے ہیں ہے دیو کس کو پراپت کیا, ارے ہم نے دیکھا برہما کی اتنی بڑی آیو ہماری, ہم نے بہت سنت دیکھے, بہت مہاتما دیکھے جو سچیدانند پر برہم کا ساکشات کرنے کے لیے ان کی اور دوڑے, ایسے دوڑنے والے سادھکوں ہم نے بہت دیکھا, بڑے اونچے اونچے سادھک جن نے سب کا پرتیاگ کر کے دوڑ لگائی آپ کی طرف آپ کو پانے کے لیے, پر کوئی برلا ہی پا سکا, یہ ہم نے دیکھا برما جی اپنا انبھو بتایا, لیکن آج کی انوکھی جھانکی यम मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, ये बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते देखा हमने, ये बालकों के पीछे पीछे दौड़ते देखा, और जिनको मिलने के लिए अनादिकाल से अब तक श्रुतियां सारा प्रयत्न कर रही हैं, करते करते थक जाती हैं, हमने देखा तुम वही परमानंद स्वरूप बड़ी आतुरता के साथ इस वन प्रांत में दौड़ दौड़ कर ढूंढ रहे थे बछड़ों को और ये बालकों को, ये तुम्हारा रोज का काम, ये तुम्हारी दैनंदिन दिनचर्या, एक दिन की चीज नहीं कि आज ही ये काम करके बैठ गए हूँ, सवेरे उठ करके रात को जब मैया के कोर में जब तक सो नहीं जाते तब तक दिन भर यही धमाचा पड़े, दिन भर यही खेल, बोले तुमने देखा, ब्रह्मा जी कहते हमने देखा छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे साथ दौड़ते खेलते हुए जब थक जाते हैं तो तुम दौड़ के जाते हो, भैया तू थक गया ना, मेरी गोद में सो जा। उस बच्चे को दौड़ करके अपनी मम्मी की गोद में, वो विशाल विशद अंक नहीं है यहाँ पर, छोटी सी गोद गोद है, उसमें सुला लेते हैं और बड़े प्रेम से अपने कर कमलों से उसके बदन को सहलाते हैं। भूल लगी होती है तो मैया का पढ़ाया हुआ पीतांबर, अरे और नहीं तो अपने कुर्ते ही पीला पीला वो झगुलिया उसको ले करके उसकी धूल पहुंचते हैं, पर कहीं सिर में धूल लगे इस बच्चे के तो फूक देते हैं, फूक देते मेरे फूक झाड़ देंगे, फूक दे ले करके झाड़ने लगते हैं। और भगवान फिर हमने और एक चीज देखी, वो क्या देखा हमने, ये सब बच्चे ही ना खिलाड़ी सब बच्चे और अबोध बच्चे, कहीं पुष्पों का चयन करते समय उनके हाथ से अगर कोई डाली टूट गई, तुम बोल रहे डाली तोड़ दी, तो डाली को सहलाने लगते हो, डाली देख भैया पेड़ ये बच्चे ने भूल की है और फिर चोट लगी होगी, फिर चोट लगी होगी तो उसको सहलाने लगते हाथ से, वृक्ष की छोटी सी डाली को उसकी शाखा टहनी को तो अपनी कोमल कर स्पर्श से उस वृक्ष को सुख देते सहलाते, फिर उसमें हाथ से पानी डालते और बच्चों से कहते देख भैया ये भी हमारे सखाई है, तुम लोग नाचने कूदने वाले सखा हो, और ये देखो बच्चों से कहते ये देखो कैसा बढ़िया बढ़िया फूल अपने अंदर से दे देते हैं, और ये जब कितनी सुगंध आती है तो बच्चे पूछते कि ये तुमको देने के लिए करते हैं सा, तुमको देते हैं ये, हाँ बोले तो तुमको हमको सभी को देते हैं, लोग बोले ये कहाँ रहता है इसके अंदर फूल, ये तो अंदर से निकल, बोले ये पेट में रहता है इनके, और पेट में रखी चीजों को ये बाहर निकाल देते हैं, तो कन्हैया तुम्हारे लिए निकाल देते हैं, बोले हाँ हाँ हमारे लिए तुम्हारे लिए, बोले तब तो इनको नहीं तोड़ेंगे, अब तो भैया भूल हो गई, ये तो हमारे जैसे ही खड़े हुए, हम भी तुम्हारे सखा आ रही, ये तुम्हारे सखा, हम तुम्हें खाने पीने को ला देते हैं, हवा करते हैं, तो ये तुम्हें देखो सुगंधी देते हैं, फूल देते हैं, और देखो ये पत्ते भी ले देते हैं, तो हम लोग खाते कहाँ पर, ये पत्ते दे देते हैं पेड़ ये सब, तो प्रसन्न हो जाते तुम, इस प्रकार से वृक्ष लता गुल्म सबको तुमने स्नेह दान दिया, ये ब्रज की सेवा कहाँ संभव, ओ भाग्य मो भाग्य नंद गोप ब्रज कसान, ये भजन की भाग बढ़ाई, हो प्रभु मुँह कह नहीं कही जाई, जा प्रभु के आनंद को लेश, बरतत अज शिव शेष महेश, सो तुम निरवधि परमानंद, जिनके मित्र परम सुख कन, केवल मनुष्य बालकों के मित्र नहीं है, पशुओं के मित्र, पक्षियों के मित्र, जलचरों के मित्र, भृंगों के मित्र, पतंगों के मित्र, लता गुल्मों के मित्र, ये मानो प्रेम का रस प्रवाहित करने के लिए ही तुम यहाँ पर अवतीर्ण हुए, इस प्रकार ब्रज रूपी हुए ब्रज के तमाम जीवों का भाग्य कितना ऊंचा इसकी सराहना करते करते फिर बोले ये शांत भाग्य महिमा चुतता वदास्ता एकादश वही वयम बत भूरि भागा एक ऋषि चषक कृत वाम सर्वाधिमता समं थे। ब्रह्मा जी भूल गए यहाँ पर थोड़ा सा वात्सल्य आया ना, ये प्रेम रस उमड़ा तो ये नहीं सोचा कि इनकी इंद्रियों को भ्रष्टाचार देवता कोई दूसरे नहीं है। ये जितने जगत के जीव हैं जो ब्रह्मा के सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं उन जीवों के तो ये अधिष्ठात्री देवता होते हैं और वो अनेक हैं, एक दो नहीं बहुत देवता हैं, वो ग्यारह इंद्रियों के ग्यारह देवता हैं, ग्यारह इंद्रियों के ग्यारह देवता हैं, तो उनमें ब्रह्मा भी एक हैं। तो उन लोगों के सब ब्रज बालकों के और ब्रज की वस्तुओं का भाग्य बताते बताते ब्रह्मा जी के मन में यह आ गया कि हम लोग भी तो भाग्यशाली हैं, तो हम लोग भाग्यशाली कैसे हैं? तो ये कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई इनके जो ये ग्यारह इंद्रियां जो है ना, इन इंद्रियों के हम देवता हैं। कहां गया इसमें क्या सुना? हाँ, तो बोले ब्रह्मा जी बोले कि भाई देखो भूल गए इस बात को कि इनके देवता दूसरे नहीं होते, ये स्वयं ही वो हैं। इस बात को भूल करके बोले कि भगवान इन ब्रजवासियों का भाग्य तो है ही और हमारे समान जो क्षुद्र जीव हैं ये तो इनके भाग्य की महिमा समुद्र के बूंद का स्पर्श भी नहीं कर पाते, इतना इनका सौभाग्य निवारणव है, लेकिन इनके भाग्य महिमा का कुछ हमको परिचय और इससे हम भी कुछ कुछ कदार्थ हुए और केवल हम ही नहीं हुए, ये ग्यारह इंद्रियों के जो ग्यारह अधिष्ठात्री देवता हैं ये सब के सब हम लोग कृतार्थ हो गए। क्यों? कि ये जो ब्रजवासी लोग हैं इन्होंने आपके माधुर रस का आस्वादन किया किस साधन से? इंद्रियों के द्वारा तो किया ना, आंख से देखा, कान से सुना, पक्ष से इन्होंने स्पर्श किया, जीभ से चखा, तो ग्यारह इंद्रियों के द्वारा ही किया। और हम महाराज इंद्रियों पर बैठे रहते हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम भी हैं, तो हमारा ये परंपरा आपके साथ संस्पर्श हो गया, सीधा तो नहीं हुआ, सीधे के लौर तो हम है ही नहीं, पर ये ब्रजवासी जिन ग्यारह इंद्रियों के द्वारा निरंतर आपके माधुर्य का रसास्वादन करते हैं उनके अधिष्ठात्री देवता होने के कारण से ये संबंध गंध परंपरा, ये संबंध भी सीधा नहीं, संबंध गंध परंपरा से हम लोग भी महाराज कृतार्थ हो गए। तो ये कहते हैं कि ये जो उनका कथन है ये कथन वास्तव में उचित तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में आ गया, मन में आ गया और ब्रह्मा जी को किसी प्रकार से ऐसा भगवान ने भास भी करा दिया इस समय कि भैया तुम इतना आत्मी को नीच क्यों मानते हो, अरे तुम तो हमारे भक्तों की सेवा कर ही रहे हो ना, हमारे भक्तों के प्रेमियों के जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के भ्रष्टात्री देवता होकर उनमें जो तुम शक्ति दे रहे हो और उनमें आए हुए रस को जो पान करने के लिए उनमें एक सत्ता स्फूर्ति दे रहे हो तुम, इसलिए तुम उसका पान कर ही रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज हम लोग जो हैं ये धन्य हो गए, इस प्रकार से आपके इस रस का पान करके हम लोग धन्य हो गए। तो मन बुद्धि ये ग्यारह हैं, मन बुद्धि अहंकार काम कर्म त्वक चक्षु रसना नासिका वाक हस्त पद, ग्यारह इंद्रियों के देवता हैं। तो इन देवताओं ने सबसे पहले तो उन्होंने नाम लिया शंकर जी का। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने कि अपने तो अपराधी हैं, पहले अपराधी अगर अपनी गलती करा दे महात्माओं में तो अपराध क्षमा कराने का भाव ही लुप्त हो गया। अगर तुम तो महात्मा बनते हो ना, बड़े बनते हो। तो ब्रह्मा जी को संकोच हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये, ब्रह्मा जी ने पहले नाम लिया शंकर जी का, अभी जो शंकर जी जो है देखिए, फिर अपना नाम भी लिया ये शंकर जी, फिर मैं ब्रह्मा, फिर चंद्रमा, ये दिशाएं दिक वायु सूर्य प्रचेता अग्नि बंधनी इंद्र रूपेंद्र ये ग्यारह देवता है। तो कहा ये सब का सब भाग्यशाली है, क्यों ये हम सभी ये ब्रजपुर वासियों के इंद्रियों के इंद्रियों को हमने पान पात्र बना प्याला बना दिया ना, हमने रस रखे कहाँ, रस का पान करे कहा से प्यालों से। तो महाराज हम सबने उनकी इंद्रियों को प्याला बनाए रखा है, ये हमारा सौभाग्य। तो ब्रह्मा जी ने जो नाम लिया शिवजी का, इसमें एक कारण ये भी है कि ब्रह्मा जी ने समझा कि शिवजी बड़े प्यारे, शिवजी जो है ये बहुत प्रिय हैं श्री कृष्ण को, तो किसी प्रेमी के सामने उसके प्रिय का नाम ले दिया जाए। ये मनोवैज्ञानिक तत्व है, किसी माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके लड़के की बड़ाई करो, माँ प्रसन्न हो जाएगी। किसी विद्वान को अगर आगे करना हो तो उसकी विद्या की प्रशंसा करो, ये प्रसन्न हो जाएगी, तो प्रिय है ना। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भी एक बड़ा सुंदर एक साधन है कि शिवजी की याद दिला दें इनको। तो शिवजी की याद दिलाने वाला भी, प्रिय की याद दिलाने वाला भी प्रियतम को बड़ा प्रिय होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने शिवजी का नाम पहले लिया और कहा महाराज ये हम लोगों ने प्याले बना दिए, और इन पात्रों में रहता क्या है निरंतर, आपके चन सरोज का मधुर मकरंद रस रहता है इन प्यालों में। और चीनी रहती ये जितनी भी ब्रजवासियों की इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में भरा रहता है केवल ये बिजेंद्र नंदर के चन सरोज का मकरंद रस, विशेष नहीं आता यहाँ पर किसी इंद्रिय में, नित्य परिपूर्ण रहते हैं ये प्यारे सुधा से। और ये ऐसा मादक रस है कि जिसने एक बार इस रस का स्वाद चख लिया रसानुभूति हो गई, ये उन्मादी का इसको उन्मादी रस कहा है रसज्ञों ने, कि फिर उसका दूसरी ओर से मनोरथ हमेशा गरीब निवृत्त हो जाता है। तो इन प्यालों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा ब्रह्मवासियों का मन तुम्हारे साथ नित्य संबंधित हो रहता है, इनकी बुद्धि तुम्हारी सेवा में नित्य लगी रहती है, और निरंतर इनके साथ संपर्कित रहते हो। बोले भाई क्या क्या करते हैं ये, बड़ी मधुर चर्चा। बोले महाराज क्या बताऊं, इनका मन तो रात दिन आपका मनन करता है, रोग नहीं मैं छोड़ मंद मंद नक्षत्र कैसे आनी हुए, और इनके मन में किसी दूसरी वस्तु के लिए स्थान रहता ही नहीं। और इनकी बुद्धि दिन भर क्या सोचती है कि श्याम सुंदर को कैसे सुख पहुंचाया जाए, और कोई बुद्धि बात नहीं सोचती, बुद्धि केवल एक ही बात सोचती है कि श्याम सुंदर से आज कौन सा खेल खेला जाए, कौन सी क्रीड़ा की जाए जिससे उनको सुख मिले, बस ये उनको सुख पहुंचाने का व्यवसाय ही बुद्धि करती रहती है। और इनका अहंकार, नित्य नित्य तुम्हारे रुचि संपादन में संलग्न रहता है, तुम्हारा रुचिकर जो कार्य वैसे ही बन जाते हैं। बोले अब तुम्हारे हमारे मित्र बनो, खेल बोले तुम्हारे मित्र, अब तुम हमें डांटने वाले बनो, हम तुम्हें डांटने वाले। इनका अहंकार जो है वो निरंतर तुम्हारे रुचिकर कार्यों में ही संलग्न रहता है और इनके कान को दूसरी बात कान के सामने सुनाने जाए तो कान इनके बहरे हो जाते हैं, सुनते नहीं, पर जहां भी तुम्हारी वेणु की ध्वनि, तुम्हारी वो मधुर मधुर से प्रवाहिणी वाणी, ये जहां देखिए मन उसी समय पूरी पर रहते हैं इनके कान। कानों को अवकाश नहीं मिलता इनके कानों को दूसरी बात सुनने के लिए, अवकाश ही नहीं है। और इनका त्वच, इनकी जो त्वचा है वो बड़े विभिन्न भावों के द्वारा अपने अपने भाव और अधिकार के अनुरूप स्पर्श के कई भेद होते हैं। स्पर्श तो सभी होता है अंग का ही, उसमें भावानुभेद से वो स्पर्श भेद होता है, उसी प्रकार की मन की उस समय स्थिति भी हो जाती है। मातृचरण स्पर्श, गुरुचरण स्पर्श, बालक का सिर स्पर्श, किसी प्रेसी का अंग स्पर्श, भगवान के चरण स्पर्श, किसी महात्मा के चरण स्पर्श, किसी गरीब की सेवा, किसी थके हुए के अंग दाबना, इन सभी में स्पर्श है। पर स्पर्शों में विभिन्न भावों के अनुसार विभिन्न रसों का उदय होता है और उसी प्रकार की चेष्टा और उसी प्रकार की क्रिया शरीर में होने लगती है। स्वाभाविक भय के मारे उच्चन पकड़ लिए किसी की, महाराज क्षमा करो आप, ब्याह करो हम डर गए, ये भी स्पर्श है। पर कांपता रहता है शरीर उस समय, कहीं ये हटा न दे, ये भी स्पर्श है। तो स्पर्श अन्न का होने पर भी विभिन्न भावों के द्वारा होता है। तो ये जो यहाँ की ब्रजवासी हैं, कोई सखा है, कोई माता पिता है, कोई कुछ है, तो ये अपने अपने यथायोग्य भावों और अधिकारों के अनुरूप इनकी जो त्वचा है वो निरंतर आपके शरीर में स्पर्श नहीं लगी रहती, दूसरा स्पर्श नहीं करती, कभी करती नहीं और वर का स्पर्श। और महाराज इनके रसन ये आपके अधरामृत से सिक्त जो प्रसाद है उसी का रस लेती, इस सिवा प्रसाद के भगवान के यत्न यहाँ के शास्त्रों में आया है कि भगवान के भोग लगाए बिना जो नैवेद्य न हो उसको खा ले, तो बड़ी बुरी चीज बताया है उसको, मल भक्षण का, भगवान के भोग लगाए बिना कुछ भी खा ले, ऐसा यहाँ तक कहा पद्म पुराण में आया। तो इनकी जो रचना है जीभ, ये निरंतर रस लेती है किस वस्तु का, तुम्हारे अपरामृत से सिक्त जो प्रसाद है नहीं उसका, और चीज नहीं खाती इनके लिए, और कोई रस रस ही नहीं। हमें पिला के दे कोई बड़ी बड़ी बड़ा बढ़िया पकवान ला के दे और कहे कि भगवान का भोग है कि नहीं, बोले नहीं तो बोले ले जाओ, और जहर ला के दे बोले भोग है, बोले भोग है तो ला दो कया दू, अरे सुनो कया दू से कहा हिरण्य कश्यपु ने ये प्रह्लाद तो मरता नहीं, तो बोले महाराज आप चेष्टा करो मारने की किसी प्रकार से, बोले हमसे चेष्टा कर हारे कर तुमको एक काम करना पड़ेगा। स्वामी पतिव्रता स्त्री है, बोले क्या काम करना पड़ेगा, बोले जहर लो और जाके पिला दो और उससे कह दो कि तुम जिसको भगवान मानते हो उसका ही चरणामृत है। अब कायदू के मन में तो भाव था नहीं, तो डर गई बिचारी, कहा एक तरफ पति की आज्ञा एक तरफ पुत्र स्नेह, कैसे जहर पिला दे, चली पर हिम्मत नहीं कि हिरण्यकश्यपु को भी कह दे कि नहीं पिलाऊंगी, और ये भी साहस नहीं कि प्रह्लाद को पिला दे। प्रह्लाद ने सुन ली बात, प्रह्लाद सामने जो आया बोले माँ ये भगवान का चरणामृत दे रहे हिचकी हाथ दूर हो गए, प्रह्लाद ने छीन लिया, छीन के बोले ये श्रीहरि का चरणामृत है, पी गया वो विष अमृत हो गया। मीरा की बात भी ऐसी आती है, तो वो इनकी रचना श्री ब्रजवासियों की रचना निरंतर श्री कृष्ण के अधान से सत्य प्रसाद का ही सेवन करती है और उनके नासारंभ ये नासिका के छेद ये भय रहते हैं भगवान के श्री अंग सुगंध से। इसके सिवा और कोई चीज इनके नासिका में दूसरी गंध सुनने के लिए इनके इनके नासिका वो इंद्रिय ज्ञान शून्य है, केवल अंग सुगंध सुनती है। और इनकी वागेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय के रूप में वागेन्द्रिय ये निरंतर प्रेमालाप करने में रसालाप करने में अथवा श्याम सुंदर के मधुर गुणगान करने में लगी रहती है। कहीं रूप गान, कहीं शोभा का गान, सौंदर्य का गान, गान गुण का गान, ज्ञान गान, इसी में कई नाम का गान। और उनके हाथ जो है निरंतर लगे रहते हैं एकमात्र श्याम सुंदर के सेवोपयोगी वस्तुओं का आहरण करने में। बस भगवान श्याम सुंदर के लिए क्या वस्तु प्रिय है उस वो वस्तु बस इकट्ठी की जाए, बनाई जाए, कभी प्रसाद बनाने, कभी चीज लाने, कभी कपड़ा सिए, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें, हाथ उनके लगे रहे निरंतर सेवा में। और कहते हैं इनके जो पद जुगल है चरण जुगल ये किशोर जाते हैं, निरंतर उसी दिशा में दौड़ते हैं जिधर जाने पर तुम्हारी सेवा संभव हो सके। तुम मेरे ऐसी बात नहीं, तुम चाहे नमिल हो, तुम्हारी सेवा संभव हो जहां जाने से, बस उसी ओर उनके पाद युगल जो है वो दौड़ते। इस प्रकार से ब्रजवासियों की एकादश इंद्रियां भगवान श्याम सुंदर तुम में जुड़ी रहती हैं और वो असमर्थ माधुर्य से अमृत से नित्य निरंतर पूर्ण रहती है। इन इन इंद्रियों का हमारा कार्य अधिष्ठात्री देवता। तो भाई हम लोग भी महाराज धन्य साक्षात संबंध में चाहिए, पर ये संबंध गंध लेशाभास तो है, संबंध गंध लेशाभास पूरा संबंध ये तो है। तो इस लेशाभास से ही हम लोग उस चिन्मय मधुरतम सुधारस का किंचित पान करते रहते हैं। उन देवता भी धन्य हैं, हमारी इंद्रियां जो धन का सुभाग्य की बात को बरने के बुद्ध यश धन भाग्य स्वतात जो इंद्रिय पति जगत के मण बुद्ध चित्त अहंकारा चक्षु आदि को रह मेरा धारा सोई भाजन कर करें जो पाना तब पद कंज अमित रस जाना छके रहत कहीं आसव सू अव भाग्य कह सके न को एक एक के अधिपति मानी सवर भाग सेवई ही आनी तदत कृतारथ भन भय सबही एक देश चख आदिक तबही सकल इंद्रिय न कर करी सेवा पास भाग्य किन वर्ण देवा अहो भाग्य या थे ब्रजवासी जी के गृह बिछरत रघुनाशी वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे के श्लोक में अब ब्रह्मा जी ये कहेंगे कि हमने तो इनके चन्नार बिंदुओं को सीधे ही मांग लिया, उनकी धूल पड़े इसके लिए तो हम कहाँ है। तब वो किसी भी गोकुलवासी के चरणों की धूल के क्या कहते हुए अपनी वासना प्रकट करेंगे अपनी कामना। तब धूल आदि में जन्म के मत प्रतिया जब गोकुलेत के कितना रवि अभिषेकम जब जीव तम तो निखिलम भगवान मुकुंद प्रद्यात चतर सुख सुख निज्ञ हरिओम दत्त।
श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारुणी पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्दगदलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इंद्रादिदेवगणवंदितपादं चंपकोद्भासितरणं विकसितमलिनाशिनं विस्फुरन्नन्दहासिनं कनकरुचिदुकूलं चारुबल्हावचूलं कमपि निखिलसारं नवनिगोपी कुमारं। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने तद्भूरिभाग्यम् हि जन्म किमप्यटव्याम् जद्गोकुलेऽपि कतमाभिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितम् तु निखिलम् भगवान् मुकुन्दस्त्वद्व्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव ईशाम् घोषनिवासिनामुत भवान् किम् देवरातेति न चेतो विश्वफलात् फलम् तदपरम् कुत्रापि अनुमीयते सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामाः सुहृत्प्रियात्मतनयप्राणाशयास्तुत्कृते तावद्रागादयस्तेनाः तावत्कारागृहम् गृहम् तावन्मोहो गृन्गडो यावत् कृष्णेन ते जनाः प्रपञ्चम् निष्प्रपञ्चोऽपि विलम्बयसि भूतले प्रपन्नजनतानन्दसन्दोहम् पथितुम् प्रभु जानन्त एव जानन्तु किम् बहूक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम् तव गोचरः अनुजानीहि माम् कृष्ण सर्वत्वम् वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतान्नाथो जगदेतत्तवार्पितम् श्रीकृष्ण विष्णुकुलपुष्करजोषदायिन् क्ष्मानिर्जया द्विजपशूदधिवृद्धिकारिम् उद्धर्म शारदरः क्षितिराक्षद्योगा कवित्मार्कमर्हम् भगवन् नमस्ते इत्यभिष्टूय भूमानम् त्रिपरिक्रम्य पादयोः मत्वाधीष्टम् जगद्धाता स्वधाम प्रत्युपद्यत ब्रह्मा जी ने भगवान श्याम सुंदर का स्तवन करते करते ये कहा कि कहीं पर भी और किसी प्रकार का भी कोई भी जन मुझे मिल जाए तो जहां आपके अथवा आपके इन पार्षदों के चरण सेवा का मुझे अवसर मिले। फिर कहा कि ये ब्रजवासी लोग जिन 11 इंद्रियों के द्वारा निरंतर आपका सेवन करते हैं प्रेम पूर्वक, उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता तो हम लोग हैं ही, ये अहंकार के अधिष्ठाता भगवान शंकर हैं, बुद्धि के ब्रह्मा हैं, मन के चंद्रमा हैं, इस प्रकार दिक वायु सूर्य पचेता अश्विनी बन्नी इंद्र उपेंद्र ये सब अधिष्ठाता रूप से आपके साथ संपर्क कर पाते हैं तो हम लोग भी धन्य हैं। ये कहते कहते ब्रह्मा जी के मन में एक भावना का और उदय हुआ, बड़ा सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना अपराधी मैं, इतना दोष करने वाला मैं, और मैंने इतनी बड़ी दुष्टता की कि इनकी चरण सेवा प्राप्त हो ऐसा वर मांग लिया, या इनके पार्षदों की चरण सेवा सीधी प्राप्त हो जाए ये वर मांग लिया, ये तो बड़ी दुष्टता हुई। तो कहते हैं कि भाई पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी योनि में आपकी चरण सेवा प्राप्त हो जाए, ये जो मैंने कहा ये मेरी बड़ी धृष्टता महाराज। मैं तो इन आपके चरणों की बात तो अलग है, आपको इन ब्रजवासी भक्तों की चरण सेवा का सीधा अधिकार मिल जाए इसके योग्य नहीं। तो अब मेरी फिर आपसे प्रार्थना है भगवान कि आप मुझे इनकी चरण रज प्राप्ति का ही अधिकार दे दें। इन आपके ब्रजवासी भक्तों के चरणों की धूल मुझे मिल जाए कि ये अधिकार देने। तो बोले तब भूर भादी जन्म के मत कविया जब गोकुलेत कत मांगेंगे अभिषेकम यह जीव तंतु निखलम भगवान मुकुंदस्त स्मृति मृग्यमेव। अद्याति एक श्लोक का अन्वय बड़ा सुंदर है। अद्याति अनाद काल तह अद्य एव प्रकट लीला काल पर्यंतम यत पादरग यश तव चरण धूल कणिका श्रुति मृग्यमेव सर्ववेद ही तदुक्त साधन ही तत्त साधन करई ही सिद्धश्च मृग्यम अन्वेषणीयमेव न तु साक्षात प्राप्त। भगवान सर्वेश्वर माधुर्य प्रकटन परस्ति नंद नंदन मुकुंद निज पादाज्य भक्ति मदत्या प्रायश एव सर्वेशा मुक्तिदाता त्वं यत येषां ब्रजवासिना जीवितं जीवन स्वरूपं निखिलं गृह वित्त पुत्रादि सर्वस्वं च तेषां कतमांगिरि अभिषेकं कथमस्य यस्य कस्यापि अमृतसा चरण धूलि कणिकया अभिषेकम् पादादि श्रोन्त सर्वांग स्नपनम् यत्र जन्मनि तत् इह मनुष्य लोके तत्रापि अटव्याम् श्री वृंदावने तत्रापि गोकुले गो गोप गोपीराम तत्त्व सेवकानां च वासभूमौ यत्किमपि कीट पतंगादि तृण गुणादि वा यत्किंचिदपि जन्म तत् तमेव भूरिभागम ब्रह्म जन्मनोत कोटि कोटि गुणाधिक सौभाग्यास्पदम मन्ये इति शेष। ब्रह्मा जी के मन में जो जो ये भगवान के समीपस्थ हुए और जो जो भगवान के स्तवन की इनके मन में नई नई स्फुरणाएं उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा जी की लालसा और भी विशद और भी निर्मल और भी निर्मल पर रूप में और जो भक्तों का वास्तविक आदर्श है उस दैन्य के सौरभ से उस दैन्य की सुगंध से सुगंधित होकर मैं व्यक्त होने लगी। तो ब्रह्मा जी बोले कि ओहो मैं महाराज अब समझ गया तुम्हारे साक्षात चरण सेवन का अधिकार प्राप्त करने की या तुम्हारे सेवकों की चरण सेवा का प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त करने की सीढ़ी जो मेरी अभिलाषा थी महाराज वो मेरी धृष्टता थी मैं इसके योग्य नहीं। परंतु नाथ मेरे प्राणों की अभिलाषा तो मिटती नहीं और बार बार अपनी धृष्टता अपनी अयोग्यता प्रत्यक्ष होने पर भी मेरा मन मचल जाता है आपके इन सेवकों की स्तनिधि प्राप्त करने के लिए। तो ये ब्रह्मा के शरीर से संभव नहीं और न ये आपका कोई पार्षद बन जाऊं कोई सेवक बन जाऊं ये मेरा अधिकार है। तो केवल ये चाहता हूं कि आपके इन ब्रजवासियों में से जिस किसी का भी चरण रज कण चरण धूल कण मुझे प्राप्त होता रहे उनके चरण रज कण से अभिषिक्त मैं होता रहूं ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि ये मैं समझता हूं कि ये ब्रह्म जन्म की अपेक्षा करोड़ों करोड़ों गुना अधिक ये सौभाग्य संपद है इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। तो मैं यही कहता कि मुझे क्या बनाना यहाँ पर इन ब्रजवासियों की चरण धूल प्राप्त करने के लिए मुझे क्या बनाया जाए, ये मेरी कोई शर्त नहीं। कीट पतंग तृण गुल में जो कुछ भी बनाकर मुझे आप ये सौभाग्य दे दें कि इन ब्रजपुर वासियों की चरण धूल कण ये मेरे ऊपर गिरती रहे और उनकी पावन पवित्र पद धूल से मैं निरंतर अपने सारे अंगों को सिक्त पाऊं। तो बोले भाई क्या है, बोले क्या क्या है, अनादिकाल से श्रुतियां जिनके पद रज का अन्वेषण ही कर रही है, खोज रही हैं, वे स्वयं भगवान नंदनंदन मुकुंद ये जिन ब्रजवासियों के जीवन का सर्वस्व बन गए हैं। लोग बहुत चीज चाहते हैं, मैंने संसार के विषयी लोग हैं, ये तो नरक के कीट की भांति नरक पर ही रहना चाहते हैं, ये तो इससे आगे बढ़ने की कामना नहीं करते। भगवान की कृपा को प्राप्त करके भी और भगवत जनों की कृपा का साक्षात करने पर भी इन लोगों के मन में तो इस नरक से आगे बढ़ने की कभी लालसा उत्पन्न ही नहीं होती। भगवान के सामने जाकर के भी ये मानते विषय ही। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास हरिनाम सुधा तज सत हठि पियत विषय विष मांगी, विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीते। तो जगत में प्राय सभी ये देह और देह के संबंधी पदार्थ, इंद्रियों को तृप्त करने वाले पदार्थ और उनके द्वारा इंद्रियों की तृप्ति, इससे आगे बढ़ते ही नहीं। तो उन मंदभागियों की बात तो ब्रह्मा जी कहते हैं करते ही नहीं। कोई परम भाग्यवान हो जो जगत के सारे संबंधों को सारे विषयों को तृणवत परित्याग करके आपके साथ संबंध जोड़ना चाहता है, वो भी यदि बहुत ऊंचा उठा हुआ कोई महापुरुष नहीं है, तब तो केवल सिद्धि ही चाहता है।